ಗಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಗಣರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಗಣರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ ಚಾರಿ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಗಣರಂಜನ ಯಶೋದಾನಂದನ ಬ್ರಜ ಗಣರಂಜನ ಯಮುನಾ ತೀರವನ श्रीनाम संकीर्तन की, श्रील प्रभुपाद महाराज की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जय गौर प्रेमानंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठति। श्रीमद् भागवतम स्कंद दस अध्याय दस श्लोक क्रमांक 32। गृह्यमाणे त्वं अग्रह्यं विकारे प्राकृते गुणे को तो इह अर्हति विज्ञातुं प्राक्सिद्धं गुणसंवृतः। गृह्यमाणे त्वं ग्राह्यो विकारे प्राकृते गुणे कौन विहरति विज्ञातो प्राक सिद्धं गुणसंवृतः। गृह्यमाणे त्वं ग्राह्यो विकारे प्रकृते गुणे कौन विहरति विज्ञातुं प्राक सिद्धं गुणसंवृतः। गृह्यमाणे त्वं ग्राह्यो विकारे प्राकृते गुणे कौन विहरहित विज्ञातुं प्राक सिद्धं गुणसंवृतः। माता है। इस श्लोक में आए हुए शब्द अर्थ इस प्रकार है, प्रियमाणे दृश्य होने के कारण प्रकृति से बने शरीर को स्वीकार करने से,
बने
शरीर को स्वीकार करने से त्वम आप अग्राह्य प्रकृति से निर्मित शरीर में ही सीमित न रहकर विकार मन द्वारा विचरित प्राकृतिक गुणे प्रकृति के गुण द्वारा सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण कह कौन है, नो उसके बाद यह इस जगत में अर्हति योग्य होता है विज्ञातुम जानने के लिए प्राप्त चिद्रम सृष्टि के पूर्व उपस्थित गुण समृत अति गुण से आच्छन्न होने के कारण। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्तिवेदान स्वामी श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री प्रभुपाद जी, हे प्रभु, आप सृष्टि के पूर्व से विद्यमान है, अतः इस जगत में भौतिक गुण वाले शरीर में बंधी रहने वाले ऐसा कौन है जो आपको समझ सके। तात्पर्य कहा गया है भक्ति समृत सिंधु 1.2.237 में, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवान मुखय जीवादो स्वयं एव स्पृजेत। कृष्ण के नाम गुण तथा रूप परम सत्य है जो सृष्टि के प्रारंभ से विद्यमान है, अतः जो सृजित किया गया है जो भौतिक तत्व से बने शरीर में बंदी है भला वे कृष्ण को किस तरह भली भांति समझ सकते हैं, ऐसा संभव नहीं है। किंतु सेवान मुख ही जीवा जो स्वयं एवं स्फूर्ति जो भक्ति में लगे हैं उनके समक्ष कृष्ण प्रकट होते हैं, उसकी पुष्टि भगवद गीता में 18:15 में स्वयं भगवान कहते हैं भक्त्या माम अभिजानति। कभी कभी श्रीमद् भागवतम में दिए गए कृष्ण विषयक विवरणों का मंद बुद्धि वाले अल्पज्ञ लोग गलत अर्थ लगाते हैं, अतः उन्हें जानने का सर्वोत्तम उपाय है कि शुद्ध भक्ति में प्रवृत्त हुआ जाए। भक्ति में जो जितनी प्रगति करता है वह उन्हें अर्थात रूप में उतना ही अधिक समझ सकता है। यदि भौतिक पद से कृष्ण को समझा जा सकता तो क्यों क्या कृष्ण ही सब कुछ है, सर्व खलम इदम ब्रह्म, इस संसार की किसी भी वस्तु को देखकर कृष्ण को समझा जा सकता था, किंतु ऐसा संभव नहीं है। ओम ज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदानीयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साजातम् सहगण रघुनाथम तम सजीव साद्वैतम सावधूतम सहित कृष्ण चैतन्य देव श्रीराधा कृष्ण पादान सहगणा ललिता श्री विशाखा हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि हरे प्रिये वंशा कल्पतरुभ्यः सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम वैराग्य विद्यां भक्ति योगं शिक्षार्थमेकं पुरुषः पुराणं श्रीकृष्ण चैतन्य शरीरधारी रूपाम्बुधिर्यास्ताहं प्रपद्ये सूर्य सत सम कांति अरुण वसन सुबलित प्रकांड देह कमल लोचन गृह्य मानस्तम ग्राह्य विचार प्रकृत गुणे को अनुदर्हित विज्ञात प्राप्त चिदम गुण समृत प्रसंग के सभी भक्त अवगत हैं, फिर भी स्मरण कराने के लिए जय श्री राधा गिरधारी भगवान की जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय श्री गौर निताय की श्री प्रभुपाद महाराज की। प्रसूत प्रसंग चल रहा है जो नल कुबेर और मणिग्रीव जो कुबेर के आत्मज है जो उनके पुत्र हैं उनके द्वारा भगवान को स्तुति इस स्तुति का पांचवा श्लोक है जो भगवान ने उनको अर्जुन वृक्ष से मुक्त करके भगवान के सामने प्रकट हो गए दिव्य रूप में, फिर तुरंत स्तुति प्रारंभ की। उस अंतर्गत ये पांचवा श्लोक है स्तुति का। तो पहले भगवान का नाम उच्चारण करके स्तुति को प्रारंभ करते हैं, कृष्ण कृष्ण महायोगिन। फिर बाद में सांख्य दर्शन जो भौतिक तत्वों का वर्णन करते हैं, और इस श्लोक में जीव और परमात्मा का वर्णन करते हैं, जीव की क्या स्थिति है और ईश्वर जो प्राकृतिक जगत से परे है उसका वर्णन करते हैं। तो इस श्लोक में कहते हैं कि ऐसा कौन इस प्राकृतिक देहधारी है जो आपको समझ सकते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत में भगवान को समझना बहुत कठिन है, क्योंकि वो भौतिक गुणों के आवृत होने के कारण वो भगवान को समझ नहीं पाते हैं। और भगवान अग्राह्य है जो इस भौतिक शरीर से परे है, तो उनको समझना बहुत कठिन है। इसलिए प्रभुपाद कोर्ट में प्रथम श्लोक दिया है भक्ति रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु का, अतः कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुख जीवाद स्वयं स्फूर्ति। अगर भगवान के सेवा करेंगे, और सेवा प्रथम कहां से शुरू होता है, सेवान मुख जीवाद, जीवा को सर्वप्रथम भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, भगवान का नाम कीर्तन करना चाहिए। अगर नाम कीर्तन करेंगे तो भगवान जो अग्राह्य है वो अपने आप स्फुरित हो जाएंगे हृदय में। जो प्रभुपाद स्मरण दिला रहे हैं कि इस स्तुति में प्रथम जो नल कुबेर और मणिग्रह की है, उसने प्रथम कई सालों से वृक्ष के शरीर में थे वो अर्जुन वृक्ष में, लेकिन जब भगवान ने मुक्त किया तुरंत उनके मुख में प्रथम शब्द आया है कृष्ण कृष्ण, वो भी दो बार। और कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने का भी और कोई नाम नहीं लिया, गोपाल ने, वासुदेव ने, कोई कृष्ण कृष्ण महायोगी। तो कृष्ण कृष्ण उच्चारण करने का मतलब भाव है उनका मणिग्रीव और उनको बेटा, क्योंकि जो कृष्ण है वो सर्व आकर्षण है, सभी को आकर्षण कर लेते हैं। तो वो तो नंद बाबा के आंगन में ही थे और भगवान की लीला को नारद मुनि कृपा से उनको ज्ञात था सब, किस तरह में ये वृक्ष शरीर प्राप्त हुआ है तो जानते थे और उनका पूरा पूरा ज्ञान था, तो भगवान की लीला का भी दर्शन वो कर रहे थे। तो उसी आंगन में भगवान का जन्म हुआ। जन्म होने के बाद जो बचपन से ही अनेक अनेक लीलाओं किए तो लीला वो देख रहे थे, तो देखते देखते और वैसे कृष्ण का रूप माधुरी को देखकर वो आकर्षण हो गए, आकर्षित हो गए, इसलिए उनके मुख में तुरंत आ गया कृष्ण 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 कृष्ण। और नाम उच्चारण होने के साथ वैसे तो गोकुल में रहकर पवित्र और शुद्ध हो गए ही गए थे, और उसमें व्रजवासी का संग प्राप्त करके कई सालों से, तो पवित्र होने के साथ भगवान का नाम भी उच्चारण किए, और उच्चारण करने के बाद तुरंत उनको साक्षात्कार हुआ कि जो इस जगत का व्यक्त अव्यक्त इदम इस विश्व, जो इस भौतिक जगत व्यक्त है और अव्यक्त है वो तो किस तरह आपके द्वारा व्यक्त होता है और अव्यक्त होता है, नष्ट होता है, प्रकट होता है और नष्ट होता है, जिस तरह कोई कुंभार होता है वो पृथ्वी माटी जल अग्नि को इकट्ठा करके घड़ा बनाता है, और कुछ समय वो घड़ा रहता है और घड़ा रह फिर बाद में पुराना होने के बाद टूट जाता है और उसी में वो मिल जाता है मीटिंग। तो उसी प्रकार ये भौतिक जगत व्यक्त होता है फिर बाद में अव्यक्त हो जाता है। तो इस साक्षात्कार प्राप्त करके फिर आगे वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत जो आप व्यक्त करते हैं अव्यक्त करके आप उनसे परे हैं, और जो भौतिक जगत में गुणों के प्रभाव के अंदर है वो आपको कैसे समझ पाएगा। तो इस समझना बहुत कठिन है, कौन ऐसा व्यक्ति है कि जो आपको समझ पाए, कह शब्द उच्चारण करके कहते हैं, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो अपने आप प्रयास करेगा तो आपको समझ पाएगा। तो इसी प्रसंग को लेते हुए श्रीमद् भागवतम में प्रथम स्कंद सातवें अध्याय में श्री व्यास देव कहते हैं कि जीव की स्थिति कहां से गड़बड़ होती है, कहां से उनका इस भौतिक जगत में आकृष्ट होता है। तो व्यासदेव कहते हैं और शुद्ध गोस्वामी व्यासदेव को मन को बात प्रस्तुत करते हैं कि भक्ति योगे न मनसी संयम सम्यक प्रणहित अमले अपचेतम पुरुष पूर्णम मायाम च तत अपाश्रय। व्यासदेव ने जो उनके आश्रम में सम्यक रूप से ध्यान में बैठे थे, और ध्यान में वह तो ध्यान योग में नहीं भक्ति योग में भगवान का स्मरण करते हुए, तो भगवान का स्मरण करते हुए उसने देखा व्यास देव ने जो पुरुष पूर्ण जो परमेश्वर है भगवान कृष्ण है उनको देखा, और साथ साथ में मायां स तत अपाश्रय उसने माया को भी देखा व्यास देव ने। और माया कैसे थी,
तो भगवान के आश्रित उनके पीछे खड़ी थी, भगवान के पीछे माया खड़ी थी और आगे भगवान खड़े थे, जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर है वो, उनका उसने दर्शन किया। फिर आगे कहते हैं इसी में 1.7.5 में, यया सम्मोहितो जीव आत्मनम त्रिगुणम आत्मकम परोपि मुन्यते अनर्थम तत् प्रकृतम च अभिपद्यते। यथा सम्मोहितो जीव, माया के पीछे जीव खड़े थे, तो जीव नजदीक होने के कारण माया के वो सम्मोहित मोहित हो जाते हैं। और आत्मनम त्रिगुणम आत्मकम, त्रिगुण के प्रभाव के कारण वो आवृत हो जाते हैं। वैसे जीव की स्थिति है परोपि, परे हैं इन सभी से, गुणों से परे है जीव, कृष्ण नित्य दास, जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, जीव का स्वरूप है भगवान का दास होना, मतलब शुद्ध है जीव, लेकिन माया के संपर्क के आने के कारण, गुण के संपर्क में आने के कारण वो बंध जाते हैं। और क्या मानते हैं, अनर्थम तत्कृतम च अभिपद्यते, जो उनका वास्तविक अर्थ है वो भूल जाता है, वास्तविक उनका क्या धर्म है वो भूल जाता है और अनर्थ को प्राप्त कर लेता है। तो जब माया के सामने जीव खड़ा रहता है तो माया का पहला प्रहार होता है, जो हमारी इंद्रिया है इसमें 3 सूक्ष्म इंद्रिया है, मन बुद्धि और अहंकार। तो इसमें माया का सबसे पहला प्रहार होता है मन के ऊपर, मन के ऊपर प्रभाव होने के कारण फिर बाद में उस प्रभावित होने के बाद अहंकार बढ़ता है, अहंकार आता है। और प्रथम अहंकार क्या होता है कि मैं ये शरीर हूं, वहां से इस जीव का खेल शुरू होता है या नाटक शुरू होता है। जब मन को ग्रहण करता है इस माया, तभी बाद में सब इंद्रियां उन पर चलने लगती है। तो जब मन पूर्ण रूप से माया में आवृत हो जाती है फिर बाद में अहंकार आता है। तो अहंकार, प्रथम अहंकार आता है कि मैं ये शरीर हूं, कि वास्तविक जो इस शरीर से कुछ जीव का संबंध नहीं है, लेकिन मन के ऊपर प्रभाव होने के साथ ये गुणों का वो सोचने लगता है मैं ये शरीर हूं। फिर शरीर के साथ अनेक अनेक हम जानते हैं, प्रायिक भौतिक जगत में देखते हैं कि मैं ममत्व प्रकट होता है कि मेरा है, शरीर के संबंध के साथ जो मेरा है वो प्रकट होता है। फिर बाद में मेरा संबंधी अनेक अनेक, फिर इंद्रिया कार्य करने लगती है, उनकी डिमांड बढ़ती है, आंख की कान की, वो बात हम जानते हैं। लेकिन माया का सबसे प्रहार, प्रथम प्रहार रहता है मन के ऊपर। तो मन जब पूरी तरह से वश में हो जाता है माया का, तब उस जीव का अधोगति शुरू होता है। तो इसी 2 श्लोक में विस्तार से वर्णन जीव गोस्वामी तत्व संदर्भ में करते हैं, और पूरा तत्व संदर्भ में ये 2 श्लोक पर चर्चा किया हुआ है जीव गोस्वामी ने, और इसी 2 श्लोक से मायावादी का खंडन भी किया है। क्योंकि भगवान व्यासदेव ने जब देखा पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के साथ माया को देखा, और माया के साथ साथ जीव को भी देखा, और जो मायावादी शंकराचार्य भाष्य और शंकराचार्यवादी जो मायावादी होते हैं वो कहते हैं कि ईश्वर और जीव एक है। प्रभुपाद उस श्लोक में तात्पर्य में बहुत भावार्थ दिया है, लंबा भावार्थ है, पूरा मायावाद का खंडन किया है। तो इस जो माया और जीव और ईश्वर एक होते हैं, तो व्यास देव अलग अलग दर्शन नहीं करते, वो एक ही का दर्शन करते हैं, जीव या परमेश्वर का। लेकिन व्यास देव ने अलग अलग दर्शन किया दोनों का, और साथ साथ में माया का भी। तो ये तीनों अलग है, जीव और ईश्वर तो अलग है ही, हम प्राय वैष्णव लोग सब जानते हैं। तो इसी तरह जब माया का प्रभाव पड़ता है मन के ऊपर, तब वो दूषित हो जाता है, और दूषित होने के साथ साथ उनको ये प्राकृतिक शरीर प्रदान किया जाता है प्रकृति के द्वारा, और उसे अज्ञान में वो फंस जाता है। प्रकृति क्रिया माणानी गुणे कर्माणी सर्वस्व अहंकार विमूढ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते, श्रीमद् भगवद्गीता 3:27 में। इस प्राकृत गुण में जब आ जाता है जीव, तब उनको अहंकार के कारण वो मान लेता है कि मैं ही करता हूँ, करता हम इति मन्ने के, सभी कुछ मैं ही करता हूँ। और वास्तव में देखा जाए तो उनका बस में कुछ नहीं होता, सिर्फ गुणों या तीन गुण उनको करा रहे हैं। विकार है, इस श्लोक में जो शब्द आया है विकार है, विकार का मतलब गुण। ये तीन गुण सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण के द्वारा ही हर व्यक्ति कार्य करता है, तो ये माया का यह प्रभाव है और इस गुणों के द्वारा व्यक्ति कार्य करता है। तो माया के प्रभाव के कारण इस भगवान को समझना बहुत कठिन है। अगर इसमें कोई प्रश्न उठता है कि मन के द्वारा सब होता है तो इसका कोई प्रमाण, तो राजा रघुगण को उपदेश देते हुए जड़ भरत जी कहते हैं कि वास्तव में इस जीव को फंसाने वाला मुख्य कोई पात्र है, कोई सूत्रधार है, वह है मन। मन के द्वारा ही व्यक्ति इस जीव इस वैश्विक जगत में फंसता है। तो श्रीमद् भागवतम 5:11-8 में जड़ भरत जी राजा रोहगण को उपदेश देते हुए कहते हैं कि गुणानु अनुरक्तम व्यवसाय व्यवसायनाय जंतो, गुणा अनुरक्तम व्यवसायनाय जंतो क्षमाय ने गुण एक मन सात, गुण के अनुरक्त होने के कारण व्यसनाय जंतो, व्यसन व्यसनो व्यसन व्यसनो मतलब दुख। भगवद गीता में भी श्लोक आया है, शब्द आया व्यसनो, व्यसनो मतलब व्यसन, व्यसन से व्यक्ति को दुख प्राप्त होता है। इस तरह एक गुण के अनुरक्त होने के साथ इस जीव को दुख प्राप्त होता है, महाराज जड़ भरत राजा रघुगण को कहते हैं। और उदाहरण देते हैं, यथा प्रदीप त्रित वर्तनम स्न शिखा सुदामा भजते हरियानंद स्वन, उदाहरण देते हैं यथा प्रदीपो, जिस तरह दीपक दीपक जलता है तो प्रकाश देता है, लेकिन ठीक तरह से दीपक जलता है तो अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई, अगर घी नहीं है त्रित नहीं है तो वो बत्ती जलने लगती है, जो कापूस का बनाते हैं बत्ती वो जलने लगती है, तो उस जलने के कारण अशुद्धमा, अशुद्धमा मतलब कालापन, वो गुजराती में मच के मच, गुजराती बाबर को मच लिखे थे तो मच जानी जाए, तो मच कालापन होने के साथ साथ तो प्रकाश नहीं देता है। लेकिन हम देखते हैं कि अभी प्राय तो दीपक खुला रहता है, लेकिन प्राचीन काल में जब दीपक जलाया जाता था तब उनको एक कांच का गोला ऊपर रखते थे ताकि हवा लगने से वो घुस न जाए, क्योंकि वही सहारा था पहले प्रकाश दीपक का, लाइट वो कुछ नहीं था, तो इसलिए जब दीपक बराबर नहीं जलता है तो कांच के ऊपर पूरा कालापन छा जाता है, तो कालापन छा जाता है मतलब पूरा अंधेरा हो जाता, दीपक जलता हुआ भी पूरा अंधेरा छा जाता है। और उसी तरह गुजरात में हम देखते हैं, गुजरात में क्या प्राय फानस, गुजरात में सुना मानो खबरी से गांव मारे है फानस होता प्याला, लाइट नहीं थी प्यारा, फानस को क्या बोलते हैं हिंदी में जानते हैं, वो जो मिट्टी का तेल से जलता है, फानस टांगा हुआ रहता है, लालटेन, हाँ लालटेन, तो वो लालटेन उसके ऊपर काश रहता है तो पूरा घर को उजाला देता है वो फानस, वो लालटेन वो जलता रहता है, लेकिन जब उसमें कालापन खा जाता है मैच लगी जाए काश में तो जलते हुए भी अंधेरा हो जाता है, और अंधेरे के कारण व्यक्ति गिरता है और साथ साथ में दूसरों को भी गिराता है। लेकिन वही फानस अगर ठीक तरह से उनकी जो लेवल है उनका जलाया जाए तो पूरा रात भर जलेगा लेकिन उसमें कालापन नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, वो जलता रहेगा, पूरा रोशनी देगा और रोशनी के कारण पूरा घर में उजाला रहेगा और साथ साथ में सबको प्रकाश प्रदान करता है। तो इसी तरह अगर अंधेरा रहेगा व्यक्ति के जीवन में तो वो गिरता है और दूसरों को भी गिराता है, लेकिन उनके जीवन में उजाला रहेगा, प्रकाश रहेगा, रोशनी रहेगा तो स्वयं भी संभलता है और दूसरों को भी प्रकाश होने के साथ साथ ज्ञान के द्वारा सभी दूसरों को भी संभाल पाता है। तो इसी तरह जिसके मन वश में नहीं है, राजा रघुगण को धर्मराज जी कहते हैं कि जिनका मन वश में नहीं है इस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में गिराकर अनेक दुख सहन करते हैं, और जिनका मन पूर्ण तरह से अपने वश में होता है तो वो इस भौतिक जगत को पार कर भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। जिस तरह दीपक जलाते हुए रोशनी प्राप्त करता, ज्ञान प्राप्त करके भगवत धाम प्राप्त कर लेता है, तो इसी तरह जीव की स्थिति होती है। और मुख्य कारण जीव को गिराने वाला है तो मन, तो इसलिए अगर मन को पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण की सेवा में लगाए तो व्यक्ति अपने आप बच सकता है और भगवत धाम प्राप्त कर लेता है। तो ये गुण के प्रभाव के कारण जीव इस भगवान को नहीं समझ सकते। तो फिर बाद में इसी वृक्ष के से प्रकट हुए यमला, अर्जुन, नर, कुबेर और बणिग्रह ईश्वर के बारे में कहते हैं कि आप इस प्रकृति के गुणों से परे हैं, आप इस माया के प्रभावित नहीं होते हैं, तो आप परे होने के कारण इस प्रकृति के बंध, प्रकृति में बंध जाने के जीव नहीं आपको समझ पा रहे। तो उसको भी राजा रघुगुण को समझाते हुए गर्भ भरत कहते हैं, क्षेत्र की आत्म पुरुष पुराण साक्षात स्वयं ज्योतिर्यव परेश नारायण भगवान वासुदेव स्वमाया आत्मन अभिद्वितीय। क्षेत्रज्ञ जो इस भौतिक जगत के परे है, क्षेत्रज्ञ जो भगवत गीता में भी आए ना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र जो मनुष्य को कहा गया और क्षेत्रज्ञ भगवान को कहा गया। आत्मन परम पुरुष, जो भगवान परम पुरुष है, पुराना पुरुष, गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि, जिस भौतिक जगत के परे है और साथ साथ में इस भौतिक जगत से सृष्टि होने के पहले भी भगवान थे, इस भगवान पुराण पुरुष होने के साथ साक्षात स्वयं ज्योतिर्यव परेश, वो साक्षात ज्योतिमय है, मतलब प्रकट है, साक्षात प्रकट, उनके कोई उनको प्रकट नहीं कर किया है, इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं आदि गोविंद सर्व कारणम कारण, तो सभी कारणों का कारण भगवान है, तो स्वयं प्रकट है। तो इसी तरह परेश इस भौतिक जगत से परे है आप, ईश्वर ईश्वर है इस भौतिक जगत के, क्योंकि आप ईश्वर होने के साथ साथ इस जगत को कंट्रोल करने वाले हैं, इसलिए आप ईश्वर है। और नारायण भगवान वासुदेव, और आपका नाम नारायण है, भगवान भगवान है, प्रभुपाद ने इसका भी भावार्थ में बहुत विस्तार से वर्णन किया है, और वासुदेव है, आप कण कण में वास करते हैं इस भौतिक जगत में, इसलिए आप वासुदेव है। और स्वमाने आत्मन अपद्यते, और आप स्वयं ही प्रकट होते हैं। इस तरह जड़ भरत को उपदेश देते हुए कई श्लोक है इस अंतर्गत, तो इसका भी वर्णन जीव गोस्वामी ने परमात्मा संदर्भ में किया, ये दो श्लोक का, पहले दो श्लोक का तत्व संदर्भ में और इस दो श्लोक का परमात्मा संदर्भ में, तत्व से जीव गोस्वामी विस्तार से वर्णन किया है, और प्रभुपाद ने इस श्लोक के भावार्थ में विस्तार से वर्णन किए। तो इस भौतिक जगत से परे भगवान कृष्ण को समझना इस प्राकृतिक बुद्धि है जिनका शरीर है वो नहीं समझ पाते। तो नल कुबेर और मणिग्रीव इस श्लोक में कहते हैं कि कौन है ऐसा व्यक्ति जो आपको समझ पाए इस भौतिक जगत में ग्रस्त होने के साथ साथ। तो ये बहुत कठिन है, लेकिन प्रभुपाद ने तात्पर्य में सुंदर उदाहरण दिए है, तात्पर्य में श्लोक दिया है, अतः कृष्ण नामादि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय सेवान मुखो जीवादो स्वयं यत स्फुरियत। उपाय बताया है श्री प्रभुपाद ने, अगर भगवान को समझना है तो सर्वप्रथम हमें क्या करना चाहिए, भगवान का नाम गुण जीवा को सेवा में लगाना चाहिए सर्वप्रथम। अगर हम और किसी इंद्रियों से भगवान को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें सफल नहीं होंगे। श्री प्रभुपाद ने इसी को साक्षात्कार किया है और इसी को भगवान की सेवा में लगाया है, जब प्रभुपाद अमेरिका गए तो सर्वप्रथम प्रभुपाद ने नाम कीर्तन दिया और जप दिया, ना कि सेवा दिया बल्कि नहीं और कि उपदेश दिया, शास्त्र दिया, प्रथम नाम दिया, नाम संकीर्तन और जप, फिर बाद में शास्त्र दिए और सब विधि विधान बाद में दिए, लेकिन सर्वप्रथम नाम, नाम कीर्तन प्रभुपाद ने दिए, क्योंकि नाम से ही व्यक्ति को भगवान समझ सकते हैं। और अपने प्रयास से इस अपने इंद्रियों से न भवेत ग्राह्य इंद्रिय तो नहीं पकड़ पाएंगे भगवान को, लेकिन जब भगवान का नाम कोई लेगा तो निश्चित रूप से भगवान अपने आप उनके हृदय में स्फुरित हो जाएंगे। इस कलयुग के युग धर्म ही है नाम कीर्तन, और जो महाप्रभु वरंग महाप्रभु इस कलयुग में पधारे हैं युग धर्म को प्रचार करने के लिए, तो वही मुख्य नामामृत जो नाम है उससे जीवों का कल्याण होता है, और इसमें जीव का जो मंगल है और वास्तविक स्वरूप है वही उसमें प्रकाशित होता है। अगर वो व्यक्ति नाम ग्रहण करेगा तो अपनी जीवा को भगवान की सेवा में लगाएगा, नाम ग्रहण करेगा तो प्रभुपाद ने इसी तरह हमें नाम दिए हैं। और प्रभुपाद महावदन्य जो चैतन्य महाप्रभु हैं और उनका धाम है, उनका बहुत प्रशंसा किए हैं। जब इस नवद्वीप मंडल में भक्त लोग थे हम सब, तब अधिवास जो प्रथम दिन थे योग पीठ में हम गए थे, वहाँ भक्ति चैतन्य महाराज ने कहा था, एक वाच्य भक्त जो वहाँ से वो याद होगा, भक्ति चैतन्य स्वामी ने कहा कि एक समय प्रभुपाद बहुत कहते थे कि विदेशी भक्तों को प्राय सभी को नवद्वीप आना चाहिए साल में एक बार, और खास करके गौर पूर्णिमा में उत्सव में भाग लेना चाहिए, तो सभी को बहुत कहते भक्त बहुत आने लगे, विदेश से प्राय सभी भक्त तो बहुत आने लगे, और दो तीन साल गया, दो तीन साल जाने के बाद बहुत भक्त आने लगे विदेश से, तो बहुत खर्चा होने लगा, क्योंकि आप विदेश से आते हैं तो टिकट भाड़ा वो सब लगते हैं, खर्चा होता है, तो सब उधर जो भक्त थे उसने मंत्रणा किया और प्रभुपाद के पास गए और जाकर कहा, प्रभुपाद हमने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला है, आइडिया निकाला है बहुत अच्छा। तो प्रभुपाद ने कहा, कौन सा आइडिया? तो सब उस समय महाराज थे, सब कहे कि अब सभी भक्त आते हैं नवद्वीप में साल में वर पूर्णिमा में, और कितना खर्च होता है, अगर वो खर्च इकट्ठा करके अगर उनको कहे कि आप मत जाइए और जो खर्च होता है वो हमें दीजिए और इस धनराशि को हम प्रसार में लगाएंगे, आप ही ने कहा है कि प्रसार ये सार है, तो इस धनराशि को हम प्रसार में लगाएं। तो प्रभुपाद थोड़ी देर मौन रहे, फिर बाद में बोले, मेरे पास उससे भी बढ़िया आइडिया है। तो सभी भक्त सोचने लगे क्या होगा, कौन सा होगा? तो प्रभुपाद ने कहा, आप सब खाते हैं ना, वो खाना बंद कर दो, उसमें जो खर्चा होता है ना वो प्रसार में लगा। तो जिस तरह शरीर का आहार है खाना और उसे पुष्ट रहता है, उसी तरह आत्मा का आहार है नवद्वीप धाम। प्रभुपाद कहना चाहते हैं कि साल में एक गौर पूर्णिमा उत्सव में सभी भक्तों को वो आना चाहिए, वो आत्मा का आहार है। और ऐसे प्रभुपाद ने कहा कि वो साधना भूमि है नवद्वीप धाम है, वो वृंदावन घर है लेकिन साधना भूमि नवद्वीप है। जब हमारे पास धन होगा साधना रूपी, तब हम घर में रह पाएंगे ना, अगर धन नहीं होगा, साधना रूपी धन नहीं है तो घर में कैसे रह पाएंगे, व्रज में कैसे रह पाएंगे? तो इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि जो नवद्वीप है मायापुर है वो साधना भूमि है और वृंदावन है वो घर है। तो इस कलयुग में जो महाप्रभु ने जो दिया है उदारता से वो नाम कीर्तन, तो नाम कीर्तन ग्रहण करने से ही इस जो प्राकृतिक गुण है सत्व गुण रजोगुण तमोगुण उससे हम मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए नाम ग्रहण करना चाहिए, और नाम ग्रहण करने से हम प्राकृतिक गुणों से मुक्त होंगे तब हम कृष्ण को समझ पाएंगे, अन्यथा ऐसा कौन है जो भगवान को समझ पाएगा? तो इसी बात को मणिग्रीव और नलकुबेर इस श्लोक में व्यक्त करते हैं कि जो आप प्रकृति के गुणों से परे हैं, आप ईश्वर हैं, और जो बद्ध इस प्रकृति शरीर से जो बद्ध जीव है वो आपको समझ नहीं पाएगा, ऐसा कौन है जो आपको समझ पाएगा। तो इसी श्लोक का यही तात्पर्य, जीव इस भौतिक गुण से परे होने के लिए भगवान का नाम कीर्तन, नाम जप करना चाहिए, तभी हम मुक्त हो सकेंगे इन गुणों से। तो प्रभुराज की कृपा से हमें यह प्राप्त हुआ है तो उनका लाभ लेना चाहिए। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम करता हूँ, अगर किसी का कोई प्रश्न है तो इस अंतर्गत पूछ सकते हैं और वनवाल प्रभु उनका जवाब देंगे। श्लोक में प्रभुपाद ने भावार्थ में यही बात कहा है, तो मैंने श्लोक भी बोला ना भागवतम का पांचवें स्कंध का 7-11 अध्याय में, तो प्रभुपाद ने वहां लिखा है कि भगवान तो चाहते हैं कि सब जीव मेरे पास है। जो एक पिता है, उदाहरण दिया है, कोई पिता है अपने पुत्र को, वो नहीं चाहते पिता के पितर उनका पुत्र दूर जाए, लेकिन पुत्र जब बिगड़ जाता है तब वो पिता जब स्नेह के कारण वो उनका शासन नहीं कर पाता है तो उनको किसी और व्यक्ति के हाथ में सौंप देता है ताकि वो सुधर जाए। तो इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि जो भगवान परमेश्वर है, भगवान कृष्ण है, उसने जीव को ये माया को सौंप दिया है ताकि वो सुधर जाए, सुधरने के बाद मेरे पास वापस आ जाए, ये बात। और दूसरा बात यह है कि भगवान, अब देखा ना व्यास देव ने माया के भगवान के साथ माया को देखा और माया के साथ जीव को देखा, तो सभी जीव माया के संपर्क में नहीं आते हैं। जो बद्ध जीव है, दो प्रकार के जीव है, नित्य मुक्त और नित्य बद्ध। जो बद्ध जीव है उनके कोई इच्छा है तब वो माया के संपर्क में आता है। तो इच्छा तो हरेक जीव नहीं स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र होने के साथ जीव का इसमें स्वतंत्र होने के साथ उनको पूरा प्रयास मौका दिया जाता है कि आप भोग करो, भगवान चाहते का पास, लेकिन वो स्वतंत्रता जो जीव के पास है उसमें दखल अंदाजी भगवान नहीं करते, इसलिए वो भगवान चाहते हुए भी उनको स्वतंत्र छोड़ देते हैं ताकि वो भगवान के पास फिर बाद में साधु संग करके वो वापस आए। तो इनके बारे में वनमाल बता सकते ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की श्री प्रभुपाद महाराज की।
टॉपिक नहीं है लेकिन कुछ ज़्यादा मैं ही समझूंगा।